ये कृष्ण का है और रामचंद्र जी का, ऐसा कोई रूप है जो ध्वंस और बाण साथ में नहीं हो, ऐसा कोई है सीता जी साथ में न हो, इसलिए इनका नित्य रूप है। अभी अवतार फिर लेंगे अगले ब्रह्मा जी के एक दिन में फिर लेंगे, फिर वैसा ही है। किंतु उस समय रावण रहेगा कि नहीं, वो रावण का तो उद्धार हो गया, तो फिर वही अब जय विजय रावण बन करके अब नहीं आएंगे, दूसरा कोई होगा उसका निमित्त कारण बन करके उसका वध करेंगे या और लीलाएं होंगी, किंतु राम का रूप यही रहेगा, कृष्ण का रूप यही रहेगा। हो सकता है कि उस समय कंस ना आए, कंस का उद्धार हो गया ना, पूतना नहीं आएगी, दूसरे लोग असुर होंगे या दूसरी कोई ऐसी लीला होगी जो जगत के लोगों को एकदम मुग्ध कर लेंगे, और उन लीलाओं का जो गान करेगा, उसका जो श्रवण करेगा, उसको इस जगत से मुक्ति होकर के अपनी सेवा में उनको दे देंगे। इसलिए इस चीज को समझें। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ, तो 15 एक बात और कहूंगा, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब, इसका अर्थ क्या है? लोग कह देते हैं कि ये भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, वो भी सिया राम है, पेड़ पौधे जितने भी हैं, जड़ चेतन जो कुछ है, वो सब सिया राम है। विश्व ब्रह्मांड में सभी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है, ऐसा मत समझो। यदि ऐसी बात है तो हनुमान जी सीताराम क्यों नहीं हो गए? उनसे बढ़कर के कोई परतत्व को जानने वाला है तो वो क्यों नहीं हो गए मुक्त होने के बाद में? मुक्त तो वही है। अरे सबसे शंकर जी और पार्वती जी उनके तत्वों को जानने वाले, कागभूषण जी उनकी सब कथाओं को कहने वाले, वाल्मीकि जी, तो फिर ये वाल्मीकि क्यों रह गए? ये लोग क्यों नहीं ब्रह्म बन करके राम बन गए, निराकार बन गए? ये लोगों को धोखा देने की बात है। आप हम ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश हैं, कृष्ण गीता में कहते हैं, तुलसी का तो बार बार कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के वश में भ्रमित होकर के ये जीवन है। अरे ब्रह्म को माया स्पर्श नहीं करती, इसलिए यदि हम ही सभी ब्रह्म हैं तो इस जगत में आए कैसे? दुख क्यों भोग रहे हैं? बिल बिलाते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? मरते और फिर जन्म लेते क्यों हैं? यदि आप ही ब्रह्म हैं तो? इसलिए ऐसी भावना एकदम सर्वथा गलत है। इसी को अद्वैतवाद या मायावाद कहते हैं। ये भक्ति का विरोधी ये ज्ञान है। जिन लोगों का ऐसा विचार का उनको कदापि किसी जन्म जन्मांतर में भी भक्ति नहीं होगी, इसको गांठ बांध करके रख लेंगे। विशेष करके जो पाठक जो आते हैं ना, सप्ताह रामायण का पाठ करते हैं या भागवत का पाठ करते हैं, उनको कुछ अकल नहीं होती। उसमें बिरले ही कुछ तत्वों को जानने वाले परम भगवत भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, जो इन तत्वों को जानते हैं, और नहीं तो बस ऐसे ही उल्टी सीधे बातें बतलाते हैं। क्योंकि सदगुरु की सेवा सुखी नहीं। सुखदेव वैसे, गोस्वामी जैसे, परीक्षित महाराज जी जैसे, नारद जी जैसे लोगों से इन लोगों ने नहीं सुना, गुरु तो करण किया नहीं, ऐसे तैसे जहां से जो बात उठाई पकड़ा। इसलिए ऐसी बात नहीं, आप लोगों को ये सब बातें बतला रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भजन करेंगे। इसके बदले में मैं कुछ नहीं चाहता कि आप हमको दो पैसा प्रणामी दे देंगे। मैं आप लोगों को देने के लिए ही भाग से आया हूँ, इस चीज़ को समझेंगे। हमको कोई इस चीज़ का स्वार्थ ही नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं सच्ची बात बतलाऊंगा। इसे इस रूप में समझ करके आप लोग हरि भजन करेंगे तब तो भजन होगा, नहीं तो ये सब बेकार का हो जाएगा। इसलिए आप सभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज भरा। और गीता में भी ममई वांसु जीव लोके जीव कु। और यहाँ पर तो साफ लिखा गया है कि आराम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पान। इसका अर्थ क्या होगा? विशेष करके कल्याण गीता प्रेस के कल्याण ने कुछ गड़बड़ी की, क्योंकि इनका शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था। यह सत्य कहते हुए आप लोग कुछ मन में हमारे प्रति कुछ भावना खराब रह सकते हैं, किंतु ये समझ रखे ये परम सत्य कह रहा है। डालमिया जी थे, डालमिया नहीं, जयदयाल गोंदिका जी थे, शुद्ध वैष्णव गुरु नहीं था, इसलिए इन चीजों को समझ नहीं सके। इसलिए इन्होंने गीता प्रेस में ऐसा लिखा, उसका अर्थ भी कदर्थ कर दिया। ये इसका अर्थ देखिए, सिया राम मैं सब जग जाए, करो प्रणाम जोर जुग पाए। सिया राम का ये तत्पर्य नहीं है कि ये सब पेड़ पौधे सब सिया राम हो गए तो मैं शब्द क्यों लगाया। ये यदि कहते हैं ये सभी सिया राम हैं तो बात तो बहुत ठीक, तब तो मान ली जाती। जैसे आपके गांव में बहुत जोर से बाढ़ आई, बाढ़ समझते हैं फ्लॉड आई, और पानी से चारों तरफ में भर गया, उस समय पेड़ पौधे भी जलमग्न हो गए, घर भी जलमग्न हो गए, कुछ कुछ बचे हैं, तो कहते हैं कि अरे भाई सब जगह जलमय हो गया, क्या घर भी पानी बन गया, पेड़ पौधे और ईंट और ये सीमेंट के ये खंभे पिलर जितने थे और मनुष्य जितने थे वह जो दिखाई नहीं पड़ रहे सब पानी हो गए जलमय। उसी प्रकार से भगवान राम और सीता का भाव जिनके अंदर में है, उनके परम भक्त हैं, ऐसा कोई चीज पदार्थ नहीं है जहां पर कि राम और सीता जी नहीं है। इसलिए सिया राम मैं सब, जो भक्त लोग होते हैं सिया राम मैं सब को देखते, सबके हृदय में सीता जी को राम को देखते। यदि ये बात होती जो सिया राम ही सब लग रहे हैं तो सिया और राम में कौन तुम हो, सिया हो कि राम हो, ये एक प्रश्न आएगा। तुम सीता जी हो कि राम हो, इसका उत्तर पहले दो, अकल चकरा जाएगी। दो तो हो नहीं सकता, ये भी बात गलत। इसलिए जिनके अंदर में प्रेम होता है राम और सीता के प्रति, वो एक कौवे के देख करके कहता अरे ये कालभूषण जी भगवान के भक्त हैं, उनको नमस्कार। ये सिया राम का भाव है, आपको देखेंगे कहेंगे आपके अंदर में सीता जी और रामचंद्र जी हैं, इसलिए आपको नमस्कार। वो जगत में जहां उनकी दृष्टि जाती है वहीं पर सीता राम का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके भाव को कहते हैं सिया राम मैं। सिया राम नहीं, मैं शब्द संस्कृत का एक है, ये प्रत्यय है, इसका प्रयोग होता है प्रचुर के अर्थ में, प्रचुर माने अधिक से। यहां पर सिया और राम का भाव प्रचुर मात्रा में है, उसको कहते हैं सिया राम। ये कौन कह रहा है सिया राम मैं सब जगह जाने, कोई भक्त कह रहे हैं, हमारे समझ से ये उमा देवी या शंकर जी कह रहे हैं, दोनों में से तो वो यदि हैं तो वही सीताराम बन जाते, किंतु ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। कालभूषुंडी से बढ़कर के राम का तत्व तो जानने वाला है कि वो क्यों सीताराम नहीं बन गए, वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, राम चित्र का समय दर्शन कर क्यों कर रहे, कृष्ण का कोई परिकर आज तक कृष्ण नहीं बना, यहां तक कि खुद शंकराचार्य पर ब्रह्म नहीं बन सके, और किस बात क्या। इसलिए रामानुज आचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने विशेष करके इन मतों का खंडन करके भक्ति की स्थापना करती है। और उसी प्रकार से हमारे तुलसीदास जी जो रामायण के लेखक हैं, लेखक नहीं प्रकाशक हैं, रामचरित तो बहुत कोटि कोटि कल्पों से है, इसको किसी ने लिखा नहीं, ये अपने आप उनके हृदय में मानस में ये प्रकट हो, इसलिए मानस रामचरित मानस विशुद्ध हृदय में जब भगवान के प्रति जीव समर्पित हो जाता है तो उनके हृदय में भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसको रामचरित मानस कहते हैं। संत तुलसीदास के मन में ये प्रकट हुई, वैसे भागवत व्यास देव के हृदय में प्रकट हुई, व्यास देव गीता भागवत के ये बनाने वाले नहीं है, उनके हृदय में इसकी उपलब्धि हुई। इस तरह से ये चीज रखेंगे, मैं कभी भी ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म नहीं हो जाऊंगा मुक्ति, ब्रह्म में मिल करके एक नहीं हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ब्रह्म से कैसे मिलूंगा, जैसे हम यहाँ पर 100-150 आदमी हैं और एक आदमी आकर के इसमें बैठ गए मिल गए, तो क्या वो हम में से किसी में एक में मिल करके एक बन गए, लाख भेड़ों में एक भेड़ और मिला दो तो वो नंबर बढ़ जाएगा, आप उसको समझ नहीं सकते। इसी तरह से पानी में पानी मिलाने से एक नहीं होता, कि हो जाता है, लोगों का भ्रम है, होल ब्रिम पानी भरा हुआ है ग्लास में परिपूर्ण रूप से, और दूसरे ग्लास में पानी पूरा भरा हुआ है, अब उस पानी को उसमें मिलाओ तो क्या होगा, पानी एक हो जाता तो फिर क्या होता, गिरता नहीं, इसलिए पानी बढ़ गया, एक नहीं हुआ। संसार में एक नाम की कोई चीज नहीं है, ये पहले समझिए, कोई भी एक चीज नहीं है। कैसे, ए और क मिल करके एक हुआ, दो अक्षर हो गए ना, एक कहां हुआ, ओ एन ई वन, प्रतियत्री अक्षर हो गए, एक कहां रहा। यदि कहिए ऐसी एक रेखा खींचे, ये वन हो गया एक, अरे एक में लाखों डॉट्स मिल करके एक रेखा बनती है, एक हुआ कहां। यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी ऐसे होता, एकत्व में बहुत। जैसे एक भारत में राष्ट्रपति अभी कोई है, यहां पर भी राष्ट्रपति हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो राष्ट्रपति कहने से लाखों प्रजाएं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, उसमें जितने बैल गाय भैंस मनुष्य लाखों करोड़ों, उसमें सर्प बिच्छू होंगे, पक्षी होंगे, कीट पतंग होंगे, उसमें नदी नाले वृक्ष सभी कुछ होंगे, ये सब मिल करके एक बना है फिजी, भारतवर्ष बना है। और ये सब ऐसे ही राष्ट्र मिल करके एक पृथ्वी बनी, तो एक पृथ्वी माने क्या। तो वैसे भगवान कहने से भगवान सब चीजों का मिश्रण, इसमें भगवान उनके अवतार समूह, असंख्य जीव, असंख्य ये ब्रह्मांड, ब्रह्मा असंख्य, कोटि कोटि मुख वाले शंकर जी असंख्य, ये सब मिला करके एक भगवान है। इसको कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए एक कोई चीज नहीं। और वह एक होने पर तो आकार हो जाएगा, यदि निराकार है तो उसको एक कैसे कहेंगे। इसलिए इन चीजों को छोड़ करके समझेंगे, मैं भगवान का दास हूं, भगवान हमारे प्रभु हैं, वो आकार निराकार इसके अतिरिक्त भी और कुछ है तो सब कुछ है, सब कुछ वही है, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सर्वशक्तिमान है, बड़े दयालु हैं। इसलिए सदरे उसको सुन को प्रणाम कीजिए, उनकी कथाओं को सुनिए, उनकी लीला कथाओं को सुनिए, और इस तरह से धीरे 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 भगवान की तरफ में चलिए। जरा कीर्तन करो तो
भक्ति का क्रम विकास इस पर मैं बोल रहा था।
समय तो अधिक नहीं, तभी मैं दो एक बातें बतलाना चाहता हूँ जो कि आपके जीवन में स्मरण रहे। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही एक मात्र करता है। किसी को देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता, भगवान को देखा नहीं तो उसका ध्यान क्या करोगे। और यदि आराम का ध्यान करते हैं कि धनुष बाण लेकर के हैं तो वो काल्पनिक होगा। यदि कभी राम का दर्शन किया तब तो करेंगे, इसलिए विग्रह को प्रणाम करो, इनको भगवान मानो, ये तो ठीक है। कल्पना करके उनकी मूर्ति मत बनाओ, कृष्ण का काल्पनिक रूप मत बनाओ, वो होने से ठीक नहीं होगा। इसलिए बतला कलयुग केवल नाम आधार, जैसा रूप होगा कृष्ण का है राम का है वो अपने आप आ जाएगा, वो बड़े दयालु। चेष्टा करने से नहीं, शरणागत उनका बन जाओ, सर्वस्व उनको दे दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। इसलिए कलयुग में नाम है, कलयुग में दान तप जप ध्यान, अरे और की तो बात क्या। महाजोगी लोग ध्यान करते हैं, अस्पराओं के एक नुपुर के झंकार पर ही उनका ध्यान टूट जाता है। विश्वामित्र को देखिए, नारद जी को देखिए, बड़े बड़े तपो ज्ञानी सबको देखिए। एक कोई यहाँ ध्यान करे तो हम सहसा हरे कृष्ण जोर से कीर्तन करेंगे, उनका ध्यान कहाँ लगेगा। और कोई कुछ कर रहा हो और हम जोर से खूब उच्चारण करते हुए हाथ उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, अथवा हम और कोई नाम कर रहे हैं, भगवान राम का नाम कर रहे हैं, जोर जोर से करो तो रेल पास हो जाएगी, जहाज पास हो, कुछ पता नहीं रह गएगा। इसलिए कलयुग में नाम है सबसे, ध्यान अपने आप राम का आ जाएगा। जहीं राम या कृष्ण कहेंगे, कृष्ण का रूप राम का रूप अपने आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जैसा है रियलाइज करा देंगे। अभी बहुत से लोग यज्ञ कराने आते हैं, धोखा देकर के रुपया बटोरने के लिए आते हैं, ये समझ रखती है। तो बिना पैसा का यज्ञ करा दे तो मैं मान लू, बस पैसे बटोरने की हालत में। कलयुग में ये यज्ञ नहीं, नाम यज्ञ केवल है। यज्ञ में शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे जो निस्वार्थ होकर के यज्ञ का मंत्र उच्चारण कर सके, नमक के बदले में नमो कर देंगे, इधर का उधर कर देंगे, वो यज्ञ भ्रष्ट हो जाए। अरे कहीं शुद्ध घी मिलेगा, चर्बी डालडा इत्यादि मिला हुआ घी मिलेगा, कहीं आम की लकड़ी शुद्ध मिलेगी, मन शुद्ध है यज्ञ करने वाले का तो इसमें यज्ञ नहीं होगा। और अजामिल जैसा पापी दुराचारी व्यक्ति भी साधु संग में आकर के हरिनाम कीर्तन कर सकता है, रात में करो दिन में करो, चलते फिरते उठते बैठते सीखते समय फिसलते समय देरी राम राम करती है, बस हो गया। इसमें कोई कुछ लगता है, इसमें पैसा लगता है। दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, सवेरे करो, छट्टी करते हुए करो, कोई भी बात नहीं, सभी काम हुआ। हनुमान का एक विचार है, जहां कोई राम नाम करेगा जरूर पहुंच जाएंगे। एक समय की बात है, नारद जी से एक तेली की भेंट हुई। तेली जानते हैं, तेली जो तेल फेंकता था पहले, अब तो वो बड़े बड़े मशीनों में तेल फेंकता, बैल को लगा दिया, बैल का आंखों को ऐसे लगा दिया और उसको घूमता था, उस पर चढ़ करके हाथ 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 हाँकता था बैलों को, तो उसको फुर्सत नहीं मिलती थी दिन रात, वो तेल ही पीता रहता था। हनुमान जी कह रहे, भले व्यक्ति, अरे तुम कभी भी तू नाम तो करो, हरि नाम करो, कुछ मुझको फुर्सत नहीं मिलती है। तो चट्टी करते समय क्या करता है, अच्छा कुछ नहीं तो उसी समय करो, तो उस समय करने वहाँ जरूर हो जाएगा। तो वो लोटा लेकर के मैदान में शाम के समय में गया, अपना कार बार बंद करके और वहाँ पर लोटा रख करके चट्टी करने लगा, और वहीं पर राम 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 राम। इतने में राम करते हैं हनुमान जी आ गए, तो ये बड़ा बदमाश आदमी, अपवित्र होकर के चट्टी करते समय ये हरि नाम करता है, स्नान करके नहीं करता है। इसलिए एक जोर से लात मारी, 20 लाख के मारने से रावण झिमिलिया खा गया, गिर गया। कुंभकर्ण जैसा विराट आदमी वो गिर करके मूर्छित हो गया। मेघनाथ जैसा व्यक्ति थरहरी कंप हो गया उससे। और ये चेली को कुछ भी नहीं हुआ, वो हर राम 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 कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी की ये क्या बात, आज इतनी जोर से इसको लात मारी, इसकी कचूमर नहीं निकल गई। कचूमर निकलना जानते हैं, पीस देना, हिंदी के शब्द हैं। इसका कुछ भी बिगड़ा ही नहीं, क्या बात है। सोचते वहां से चले गया, वो भी उठ करके चला गया, ये भी चले गए। राजभवन में राम के यहाँ पर पहुंचे। तब तक तो रात हो गई है, शाम की ये बात की रात हो गई। राम जी पलंग पर लेते हुए ऊह आह कर रहे, कराह रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आज प्रभु हमारे कराह क्यों रहे। निकट में गए, प्रणाम करके बोले, प्रभु आप कराह क्यों, क्या दर्द हो रहा है। तो तुमने एक लात खूब जोर से मारी और फिर पूछ रहा है कि आप क्यों कराह रहे हैं। तुम्हारी लात पा करके, मार खा करके कौन आदमी है जो कराहे नहीं। दूसरा हिस्सा तो मर गया होता। मैंने कहा कि आपको मैंने लात मारी, ये तो कभी संभव नहीं है। अरे तेली को मारा उस समय वो राम राम कर रहा था, तो हाँ कर रहा था, तो राम राम कर रहा था, तो मैं उसके अंदर में प्रवेश तो मैंने किया ना। राम नाम और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही। कृष्ण नाम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, इस चीज को समझो। तो जिस समय वो राम नाम कर रहा था, मैं उसके अंदर में पहुंच गया, तो वो लात हमारे ऊपर में लगी, हमारी कमर टेढ़ी हो गई है। हनुमान जी ने कान पकड़ा, अब कहीं नहीं कहीं, इसलिए पवित्र अपवित्र शक्ति से करते हुए भी स्नान करने की बात, उसके पहले भी आधी रात को, देर रात को, दिन में जब कभी समय मिले तभी भगवान का नाम कर सकते, स्नान करने की भी जरूरत नहीं है। जो राम नाम कर रहा है, कृष्ण नाम कर रहा है, वो तो हजारों लाखों बार स्नान उसका हो गया। इस विषय को ठीक रखना, ऐसा सरल शुभ सहज नाम में जिनको रति रुचि नहीं है वो दुर्भागा है, उनके समान जगत में कोई दुर्भाग। इस चीज को इसलिए आप लोग भी जब मिले, कलयुग में इस नाम के अतिरिक्त आप पवित्र हो ही नहीं सकते, पवित्र नहीं हो सकते, वातावरण सब गंदा है। इसलिए जिस अवस्था में जो व्यक्ति है वो बिना पैसे का, आज स्त्री कमाती है, बेटी कमाती है, बेटा कमाते हैं, बाप कमाता है, सब कमा करके भी घर का पूरा नहीं पड़ता। अब पहले एक मुखिया काम करता था, सब घर घर का पालन पोषण करता था। आज मान्य की कमाई करता है खूब अधिक, तो एक बिल्डिंग मंगाने में भारत से मार्बल आएगा, इटली से मार्बल आएगा, न जाने कहाँ कहाँ की क्या चीजें होगी, उसकी सारी कमाई तो उस बिल्डिंग में लग गई, खाने के लिए कुछ बचा नहीं। और स्त्री के पास में काफी माल था, वो दूसरी जगह चली गई, फिर इसलिए कमाई पूरी नहीं पड़ेगी भाई। इसलिए बिना पैसे का हरि नाम, पवित्रता का भी विचार नहीं है, जहाँ रहो जैसे रहो भगवान का नाम। इसे सहज ही में जो कुछ होना होगा सब इसी के द्वारा हो जाएगा, जन्म मृत्यु सब पार कर। अंत में एक छोटी सी आराम की कथा बतला करके मैं अपना वक्तव्य आज का समाप्त करूँगा। रामचंद्र जी भागवत की तो कथा कह रहा था, किंतु इसमें राम का भी प्रसंग और विशेष करके ये स्थान भी रामचरितमानस था, इसलिए थोड़ी सी उनकी कथा से ही मधुर ही न समापये मधुर रूप में उनकी कथाओं को। इस कथा को सुनने से भी आपके चित्त पवित्र हो जाएंगे और भगवान में जरूर मन लगेगा। रामचंद्र जी लंका विजय के पश्चात रावण को ध्वंस कर अयोध्या में आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, 11,000 वर्ष राज्य किया, हनुमान इत्यादि परकर इनके साथ। 11,000 वर्ष के बाद में उनकी इच्छा हुई, अब लीला का संगोपन करेंगे, अब हमको जाना है बैकुंठ, इसलिए कोई बहाना ढूंढने लगे। जैसे आप लोगों ने, आप लोग जानते होंगे कि रावण ने असल सीता को नहीं चुराया, किसको चुराया, माया सीता को। रामचंद्र जी ने सीता जी को अग्नि में रख दिया था, इसलिए रावण विजय के पश्चात में लंका में अग्नि में जो सीता जी को जलने के लिए जो गई, इसका वो मतलब जलाना नहीं था, बल्कि सीता जी जो अग्नि में थी वो परछाई अग्नि में चली गई और असल सीता जी को अग्निदेव लेकर के राम को समर्पित। असल में सीता जी तो राम से कभी विजुक्त हो ही नहीं सकती, ये लोगों को दिखलाने के लिए था। उसी तरह से एक और कुछ शिक्षा के लिए 11,000 वर्ष के बाद में एक धोबी अयोध्या का, वो अपने स्त्री को शाम को 1,00,000 मारा। इतनी रात हो गई, कहाँ थी? मैं राम नहीं जो लंका में 1 वर्ष या कितने दिन रही रावण के पास में और फिर उसको रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा, ये कहकर से लात मार करके घर से बाहर चली। राम के जो CID थे रामचंद्र जी से आकर के ये बात को कहा। कुछ और CID जो उनके थे कुछ ऐसे ही बातें जो प्रजाओं में हो रही थी वो सुनी, बस सीता जी को त्याग करने के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा उनको भेजवा दिया जंगल में सदा के लिए प्रत्याग कर। सदा के लिए नहीं माने उस लीला के अंतिम समय के लिए प्रत्याग। सीता जी को लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम के किनारे पर कहीं पास में गंगा के तट पर छोड़ा। सीता जी वहां पर बेहोश हो गई। प्रसंग बहुत लंबा है, मैं बहुत संक्षेप करके बतला रहा हूं। सीता जी उस समय में गर्भवती थी, वाल्मीकि जी अपनी कन्या समझ करके उनको ले गए और उनका पालन पोषण करने लगे। उनके आश्रम में ही लौकुश का जन्म हुआ और उनका नाम लौकुश था। दो ये संतान एक ही दिन में पैदा हुए, जमज संतान। कुछ दिनों के बाद में ये लोग बड़े हुए। सीता जी अपने हाथों से इनको अस्त्र का अभ्यास कराती और सारी शिक्षाएं देती और वाल्मीकि जी इनको सभी कुछ पढ़ाते थे। अस्त्र शस्त्र सदाचार शास्त्रों का तात्पर्य अपने यहाँ से पढ़ाते थे और वाल्मीकि रामायण इनको कंठस्थ रामायण का याद करा दिया और कैसे इसको गाया जाता है वीणा यंत्र पर इसको भी बतलाया। एक तो राम ही जैसा इनका दोनों का रूप बहुत सुरीला कंठ, जब वीणा पर तान छेड़ते थे तो लोगों का चित्त बर्बत खींच लेते थे। एक समय की बात है, रामचंद्र जी अयोध्या में है, यहाँ सीता जी वनवास में है, राजमहल छोड़ दिया है और राम अपने राजभवन में है, किंतु वहां पर चटाई बिछा करके रहते हैं, खाते हैं क्या? बस थोड़ा सा फल मूल। सीता जी जैसा जीवन व्यतीत कर रही है वैसा वही जंगल वहां पर रह करके ये जंगल में। सीता जी को सांत्वना देने के लिए वाल्मीकि जी हैं, अपने दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के सांत्वना मिल जाती है। राम को सांत्वना कौन दे? कोई देने वाला। बड़े दुखी हैं, दिन रात सीता जी के विरह में जल रहे हैं, कहें तो किसी से कहें? हमारे समय से सीता जी की अपेक्षा राम ही अधिक दुखी थे। मन नहीं लग रहा, वशिष्ठ जी से कहा, जे प्रभु मैंने सोचा कि यज्ञ करने में हमारा मन लग जाएगा, इसलिए यज्ञ कराने की इच्छा हुई। कुछ समय के लिए तो भूल ही जाऊंगा, सीता जी को भी भूल जाऊंगा। वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा तू यज्ञ नहीं कर सकता। क्यों गुरु जी? सीता जी को लाओ तब यज्ञ कर सकोगे, अकेले नहीं कर सकते। तो ये तो मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं ला सकता तो यज्ञ नहीं कर सकता। फिर भी कोई उपाय बतलाइए, शादी कर लीजिए। आपके पिताजी के 300 सासरानियां थी, आप एक पिताजी से और दूसरी कोई स्त्री से विवाह कर लीजिए। सभी स्त्रियां आपसे विवाह करना चाहेंगी, लड़कियां नहीं, ये भी नहीं करूंगा। तो यज्ञ मत करो, तो नहीं करूंगा, आप फिर कराइए। तो ऐसे नहीं, तो उपाय बतलाइए। उपाय है सीता जी की सोने की मूर्ति बनाओ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उसको साथ में बाएं तरफ लेकर के यज्ञ करो। हाँ ये स्वीकार है, ठीक, सोने की सीता बनी और नैमिषारण्य में बड़ा भारी विशाल यज्ञ हुआ। सारी माता जी गुरु जी और जितने रहस्य महर्षि इत्यादि सुग्रीव नल नील इत्यादि जितने राम के परिकर थे, हनुमान जामवंत इत्यादि सभी का निमंत्रण गया, सभी लोग आए। होने लगा यज्ञ, दो सवेरे शाम को होता और सवेरे दोपहर में हरी कथा कुछ पुराणों की कथा होती और इतने में लौकुश एक दिन वहां आ गए और बड़े सुरीले कंठ से रामायण का गान करने लगे। एक तो राम जैसा सुंदर रूप, अभी उठता हुआ किशोर, 8-9 वर्ष का रूप, बहुत ही सुंदर, गला भी वैसे, और ब्रह्मचारी का वेश, सिर के केसों को एकत्र करके बांध दिया जैसे रामचंद्र जी बांध करके दंडकारण्य में गए, और वीणा लेकर सुरीले कंठ से गायन कर, वो भी